प्रातः क्लास चल रहा था 31/3/1967 शुक्रवार को पांचवें पेज के मध्य में बात चल रही थी बच्चा पना आपको जान जाए इसलिए बेहद के बाप को आना पड़ता है। तो बच्चे को अपन की जानकारी की देने के लिए बाप को आना पड़ता है और आकर के पहले पहले रियलाइज कराते हैं। आत्मा को रियलाइज कराते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा तो हो बेसिकली, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम कौन सी विशेष आत्मा हो। किस कुल में विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, अर्थात कौन से धर्म वंश में विशेष पार्ट बजाया है और क्या क्या पार्ट बजाया है, रियलाइज कराते हैं आत्मा को। तो जो आत्मा का रियलाइजेशन करते हो कि वास्तव में मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, ये रियलाइजेशन परमात्मा के बगैर कौन रियलाइज कराएगा। कौन कराएगा? परमात्मा रियलाइज कराएगा या परम पिता रियलाइज कराएगा? कहते हैं ना परम पिता परमात्मा, ऐसे तो कभी नहीं कहते परमात्मा परम पिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं शंकर शिव। तो रियलाइज कराने के लिए तुम आत्माओं को अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराने के लिए कि वास्तव में तुम कौन आत्मा हो, कौन चाहिए? परमात्मा चाहिए, अर्थात परम शब्द लगा के किसकी तरफ इशारा किया? परम पार्टधारी आत्मा के प्रति इशारा किया, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा है। जो हीरो पार्टधारी आत्मा इस रंगमंच पर आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाती है, हीरो पार्टधारी को प्रॉम्प्टिंग देने वाला डायरेक्टर कौन है? है जो डायरेक्टर है सदा पर्दे के पीछे रहकर डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग देता है। पर्दे के बाहर कभी नहीं दिखाई देता। तो वो ही डायरेक्टर बाप, बेहद का बाप कहते हैं। अभी तुम बच्चे ये बात समझते हो ना? बच्चे तुम क्या जानती हो कि आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, ये आत्मा क्या होती है? अच्छा चलो, डॉक्टर लोग भी जानते थे भाई आत्मा है तो बहुत सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है कि न आंखों से भी नहीं देखी जाती। जैसे कोई मलेरिया के रोगी के कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं तो उनको यंत्रों से देखते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देते। तो जब इन आंखों से नहीं देखा जाता है और यंत्रों से भी नहीं देखा जाता है, इसका मतलब उन कीटाणुओं से भी अति सूक्ष्म है। तो ट्रायल करने की बात है, क्या ट्रायल किया डॉक्टर लोगों ने? ट्रायल किया मरते हुए व्यक्ति को शीशे में बंद कर दिया, शीशे में बंद करके देखें शीशे में बंद करके देखना, इन आंखों से देख नहीं सकेंगे। तो फिर देखेंगे कैसे? शीशा फट गया, दिखाई फिर भी नहीं दी, तो क्या देखेंगे? तो देखो, दुनिया में तुम्हारे जैसा एजुकेटेड कोई भी नहीं है। ऐसी नॉलेज वाला बाकी इतना जरूर है कि तुम बच्चे भी नंबरवार हो। आत्मा जो पार्टधारी है उसके पार्ट को जानने के लिए नंबरवार जानने वाले हो, समझा ना? अभी तो इतना तो सबको मालूम पड़ा है, बेसिकली ये सबको पता चल गया, तुम बच्चों में से सभी को पता चल गया कि आत्मा बिंदी है। और ये तो तुम समझाते भी हैं कि आत्मा बिंदी है, तो आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी आत्मा है जिसे परमात्मा कहते हैं वो भी बिंदी है। तो परमात्मा को बिंदी क्यों बताते? परम माने परे थे, परे रहने वाला या बड़ा, क्योंकि उस परमात्मा आत्मा का इतना बड़ा पार्ट है जो तुम सब से टैली किया जाए तो बहुत लंबा पार्ट है। इतना लंबा पार्ट है कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालों को क्रॉस करने वाला पार्ट। इसलिए कहा जाता है परमात्मा परम पार्ट धरे। जो परम पार्ट धरी आत्मा है उसको तुम बच्चों के बीच टैली किया गया है। परमपिता को टैली नहीं कर सकते, परमपिता शिव को तुम बच्चों के साथ टैली कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, और परमात्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। तो जो एक जैसी आत्माएं हैं उनके बीच में परमात्मा को टैली किया जा सकता है, परमपिता को टैली नहीं कर सकते। मनुष्य आत्माओं का बाप परम पार्टधारी परमात्मा तो है, लेकिन वो भी जन्म मरण के चक्र से न्यारा नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, और जन्म मरण के चक्र में जो जितना जास्ती आएगा तो ज्यादा पतित बनेगा या कम पतित बनेगा? ज्यादा पतित बनता है, क्योंकि दुनिया की हर चीज को, हर आत्मा को चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार होने के बाद तामसी न बने, पुरानी से पुरानी न बने। तो ये तो समझा, अनेक जन्मों में सुख भोगते भोगते इंद्रियों से ही सुख भोग आ जाता है, तो संघ के रंग में आने से आत्मा पतित बनती है, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अनेकों का संघ का रंग लगता है ना, कि एक का लगता है, अनेकों का लगता है। तो हम सब आत्माएं पावन से पतित बन जाती हैं। अब पतित बन गई हैं जरूर, क्योंकि हम आत्माएं जो इतनी हल्की फुल्की और सूक्ष्म हैं, तो ऊपर रहेंगी या नीचे रहेंगी, कहाँ की रहने वाली है? ऊपर की रहने वाली, अपने घर में रहते हैं, उसे कहते हैं ऊंचते ऊंच धाम, शांति धाम। जैसे कहते हैं परमात्मा, ऐसे ही कहते हैं परम धाम। कैसा धाम? परे ते परे धाम। और उस धाम में कोई भी पतित आत्मा नहीं रह सकती। क्या पतित माने? नीचे गिरा हुआ। पतित माने नीचे गिरा हुआ, और पावन माने ऊंचा, ऊंची स्टेज में जाने वाला। तो वहां से तो पावन ही रहेंगे, और जो इस दुनिया में आते हैं वो पावन ही आते हैं। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो परम धाम से आवे और पावन न हो। फिर इस दुनिया में आकर पतित तो बनते हैं है? ऐसा होता है? है? अरे पावन धाम परम धाम से इस दुनिया में आते हैं तो पतित तो बनते हैं है? है? माना सतयुग में आवेंगे, सत्ययुग में तो पतित बनेंगे है? हाँ, भले सत्ययुग है, क्योंकि इंद्रियां नंबर वार श्रेष्ठ है, एक जैसी है, कोई कर्म इंद्रियां है, कोई ज्ञान इंद्रियां है। जैसे कर्म करने वाले हैं तो कर्म करना कर्म इंद्रियों से ही होता है, ये जो कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से, वो कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के मुकाबले श्रेष्ठ हैं या भ्रष्ट हैं? तो भ्रष्ट हैं तो कर्म भी कैसे करेंगे है? भ्रष्ट कर्म करेंगे, ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, तो नंबर वार श्रेष्ठ कर्म ही करती है। ज्ञान इंद्रियों में भी नंबर वार है और कर्म इंद्रियों में भी नंबर वार है। तो जो कर्म इंद्रियां हैं उनका कर्म कौन से युग से शुरू होता है? हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों का कर्म ज्ञान अर्जन करना, वो श्रेष्ठ युग है, उसे कहते हैं स्वर्ग। और जो कर्मेंद्रियों का कर्म जहां से शुरू होता है जिस युग से, वहां से कहते हैं नरक। क्या कहते हैं? नरक। और शब्दों से ही मालूम पड़ता है नरक का मतलब ही है कि नर जो करे तो क्या बनाएगा? नरक बनाएगा। नर माने मनुष्य, नर माने मनुष्य, मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करे। और मन बड़ा चंचल होता है, स्थिर होता है, मन बड़ा चंचल होता है, तो मन का उपयोग प्रधान है मनुष्यों के लिए। बुद्धि प्रधान नहीं है, मन प्रधान है मनुष्यों में या बुद्धि प्रधान है? है मन प्रधान है। तो और मन चंचल है, तो चंचलता के वशीभूत होकर के जिसका मन प्रधान है वो मनुष्य गड्ढे में जाएगा, नीचे जाएगा या ऊंचे जाएगा? क्योंकि मन की प्रधानता है, बुद्धि की प्रधानता नहीं। गीता में तो कहा है कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन प्रबल है। ग्यारहवीं इंद्रिय है ना, परंतु मन से भी प्रबल नंबर वार मनुष्यों की बुद्धि है। नंबर वार क्यों कहा है? बुद्धि माने अकल, मत। कोई श्रेष्ठ मत देते हैं सदैव, कोई भ्रष्ट मत देते हैं, कोई मिक्स मत देते हैं। अच्छी मत भी देंगे और स्वार्थ में आकर बुरी मत भी दे देंगे। तो बुद्धिमान मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य नंबर वार हैं, उनमें कोई तो अव्वल नंबर होगा। वो कौन है? हाँ, जिसको कहा आत्माओं के बीच में रख कर जिसको टैली किया जाए कि ये हैं नंबरवार आत्माएं और इनमें अव्वल नंबर ये आत्मा है। किस आधार पर? मत के आधार पर, बुद्धि के आधार पर। तो कहेंगे टैली करने के आधार पर कहेंगे कि इतनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें अव्वल नंबर मत देने वाली कौन है? मति कहते हैं ना, तुम्हारी मति मारी गई। मति माने बुद्धि। तो कोई होगी या नहीं होगी? हैं? होगी। जो होगी वो संघ के रंग में नहीं आती है? जब संघ के रंग में आती है तो पतित नहीं बनती, तो श्रेष्ठ मत कैसे देगी? है, खुद ही पतित बनती है और ज्यादा से ज्यादा संघ के रंग में आती है या कम आती है? क्यों है? क्योंकि वो तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहती है ना, तो लंबे समय तक मौजूद रहेगी, तो ज्यादा के कनेक्शन में संबंध में आएगी या कम लोगों के संबंध संपर्क में आएगी? तो जितना ज्यादा संघ का रंग लगेगा अनेकों का, तो ज्यादा नीचे गिरेगी। तो मति माने बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी या नीचे गिरेगी? है, नीचे गिरती है। और बुद्धि जिसे हम कहते हैं अकल, मनुष्य के जीवन में हजार नियामत है, जन्म लेते ही कौन सी चीज मिलती है हजार नियामत के रूप में हर मनुष्य आत्मा को? है, बुद्धि। अब कोई उसका उपयोग करे या न करे, कोई उसका उपयोग अच्छा करता है और कोई उपयोग अच्छा नहीं करता, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान होगी तब ही करेगा ना। है, पहचान होनी चाहिए या नहीं? है, तो पहचान रहती है। इस मनुष्य सृष्टि में जब कर्म प्रधान हो जाता है मनुष्य, द्वैतवादी द्वापर युग से तो सतो प्रधानता गायब होने लगती है और रजो प्रधानता बढ़ जाती है। रजोगुण बढ़ता है तो कर्म की प्रधानता होती है। सतयुग में देवी देवताएं कोई कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से है नहीं करते, फिर भी जीवन में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो पूर्ति होती है या नहीं होती है? है कैसे होती है? कर्म ही नहीं करेंगे तो पूर्ति कैसे होगी? है हैं? कर्म करना श्रेष्ठ है या न करना श्रेष्ठ है? हैं? कर्म करना श्रेष्ठ है लेकिन देवताएं तो कोई कर्म नहीं करते, कोई धंधा थोड़ी करते हैं, करते हैं
लेकिन करते कुछ हैं?
है?
करते हैं बुद्धि
क्या करते हैं?
करते हैं
नहीं चलना है, ये कोई धंधा थोड़े ही हुआ ये है। पेट पूर्ति के लिए कोई कर्म करना
संकल्प तो करते होंगे ना,
ये करना कर्मेंद्रियों से नहीं हुआ, संकल्प विकल्प मन करता है या कर्मेंद्रियां करती हैं? मन करता है। कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है, तो जो श्रेष्ठ है वो तो श्रेष्ठ है ना, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। नंबर बार मनुष्यों को बुद्धि है लेकिन ऐसे गीता में कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन, क्या मनुष्यों के बीच में विशेष बुद्धिमान कौन सा मनुष्य? अर्जुन नाम दिया। नाम किस आधार पर दिए जाते हैं? क्या काम किया है? हाँ, जैसे धन अर्जन करने वाले को कहते हैं धनवान है, वो तो स्थूल धन की बात हो गई। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, तो स्थूल धन के मुकाबले ज्ञान धन ज्यादा श्रेष्ठ है। गीता में बोला ना, नहीं ज्ञान सद संपवित्रम यह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं, और पवित्र है पावन है ना, पवित्र माने पावन है, तो जितना पावन होगा उतनी उसकी कीमत हाँ बढ़ती है। जैसे दूध है मिक्सरिटी नहीं है कुछ, तो अच्छी चीज है ना, उसमें थोड़ा कुछ मिक्स कर दिया जाए पानी वानी तो उतना काम का नहीं है। तो ऐसे ही ज्ञान बुद्धि के अनुसार होता है, जैसी जिसकी बुद्धि वैसे उसका ज्ञान, और बुद्धि नंबर बार बुद्धिमानों में मनुष्यों के बीच में श्रेष्ठ बुद्धिमान अर्जुन को बताया। तो जरूर उसने क्या अर्जन किया है, ज्ञान धन अर्जन किया। अरे अर्जन करने की क्या बात, हर एक की बुद्धि में ज्ञान तो होता ही है, नहीं होता है? होता है, लेकिन जैसे धन नंबर बार हर एक के पास कुछ न कुछ होता है कमाया हुआ, लेकिन कोई उसका उपयोग करता है और कोई उपयोग ही नहीं करता, ना अपने काम में लेगा, ना परिवार के बाकियों के काम में लगाएगा, ना दूसरों को उस धन से लाभ लेने देगा। तो हर मनुष्य आत्मा के पास अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी ज्ञान धन है वो उपयोग की बात है। जो जितना उपयोग करेगा और सही उपयोग करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, नहीं उपयोग करेगा तो फायदे में नहीं रहेगा। तो एक बात तो हुई, जो भी ज्ञान धन है बुद्धि के अनुसार उसको सही उपयोग करना और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। जैसे कोई लोग होते हैं बड़े धनवान हैं लेकिन बड़े कंजूस हैं, न परिवार के बाकियों को खाने देते, न बाहर वालों को देते और न स्वयं उपयोग कर पाते, तो क्या होता है, है? इसकी दबी रही धूल में मर जाते हैं और मिट्टी में दबा रहता है, जमीन उगाड़ के रख देते हैं ना, तो किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, राजा ले लेता है, राज्य हड़प लेता है, कोई के ले जाए चोटा और कोई की आग जलाए, ऐसे होता है ना। तो पहली बात है धन का उपयोग करना, और दूसरी बात है जो अव्वल नंबर मनुष्य है जरूर अच्छा उपयोग करने वाला होगा, है कि कंजूस होगा, है अच्छा उपयोग करेगा या कंजूस होके रहेगा, अच्छा उपयोग करेगा। तो जो अच्छा उपयोग करने वाला है उसको सब पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, है सब पसंद करेंगे, तो सबकी दुआएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, है सबकी दुआएं मिलती है। तो जिसकी आत्मा में ये स्वभाव संस्कार भरा हुआ है कि ज्ञान धन का या स्थूल धन का सही उपयोग करता है, उसको दुआएं भी बहुत मिलती है, उन दुआओं के आधार पर वो आखिरी जन्म तक भी भले कितनों के संग के रंग में भी आवेगा तो दुआओं का प्रभाव उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा? है, करेगा। तो अंत तक भी, अंतिम जन्म तक भी कितनों के भी संसर्ग संपर्क में आवे और इस द्वैतवादी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा को संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते संघर्ष भी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? है, करना पड़ता है। जो सच्चा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा या झूठा होगा वो ज्यादा संघर्ष करेगा? है, क्यों? झूठे आदमी संघर्ष नहीं करते, दूसरों को तंग नहीं करते? है, करते तो हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए करते हैं। और जो सही धन का उपयोग करने वाला है वो स्वार्थ के लिए विशेष देखेगा या अनेकों का फायदा हो वो देखेगा? है, अनेकों का फायदा हो। तो सवाल ये है, उसके अंदर स्वरथ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी कर्मेंद्रियों का सुख लेने के लिए लगाव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? है, रहेगा नहीं रहेगा? स्वार्थी होगा तो उसको लगाव ज्यादा रहेगा स्वकीय इंद्रियों का सुख भोगने के लिए, अपने रथ को सुखी रखने का ज्यादा लगाव होगा तो वो अन्य आत्माओं के लिए बांटने का काम नहीं करेगा। माने कंजूस है तो जो जिनको जरूरत है और वो कंजूसी करता है तो उसे दुआएं मिलेंगी कंजूस को या बददुआएं मिलेंगी? है, बददुआएं मिलती हैं। तो दुआओं के आधार पर जो धन ज्यादा अर्जन करता है और अर्जन करने के साथ साथ उसे बांटता भी है आपस में तो उसको दुआएं ज्यादा मिलती हैं। दुआएं जीवन में श्रेष्ठ वातावरण बनाने के निमित्त बनती हैं। उसका वाइब्रेशन अच्छा बना रहेगा तो ऐसी आत्माएं जिनमें धन का उपयोग करने का अच्छा मादा होता है वो अंतिम जन्म तक भी उस अच्छे स्वभाव संस्कार के आधार पर बुद्धि के हिसाब से जो भी हजार नियामत मति मिली है उसके हिसाब से वो समाज के बीच में कल्याण ही कल्याण करने का स्वभाव होने के कारण इस गिरती हुई दुनिया में कलयुग के अंत में तामसी समय में कमजोर बनेगा या समाज के अंदर पावरफुल बनेगा? पावरफुल बनेगा। ये समाज, ये दुनिया कलयुग के अंत में तामसी बनती है या सात्विक रहती है? और जो धन अर्जन करने वाला अर्जुन है नंबर वन, अर्जन करने के साथ साथ उसका खर्च भी तो सात्विक होना चाहिए है? कोई कमाता बहुत है और बर्बाद भी बहुत करता है, तो उसका कमाना सार्थक है? है? सार्थक तो नहीं हुआ। लेकिन जो कमाता भी ज्यादा है और उसका उपयोग सदुपयोग भी ज्यादा करता, अच्छा करता है, लेकिन इस तामसी दुनिया के बीच में जो संघर्ष करना पड़ता है सच्चे आदमी को, तो वो कमजोर बनता है या पावरफुल बनता है दुनिया की नजरों में? अरे अरे, तामसी दुनिया वालों के बीच में रह करके वो सच्चाई से जो चलेगा वो कमजोर होता जाएगा या पावरफुल बनेगा? है? पावरफुल बनेगा। आज के टाटा बिरला डालमिया ये सच्चाई से काम कर रहे हैं जीवन में, सच्चाई से धन अर्जन करके अरबपति करोड़पति शंखपति पद्मपति बन रहे हैं या झूठा रास्ता अपना करके कर रहे हैं? कैसे अर्जन कर रहे हैं? है? झूठा रास्ता। उन झूठों के बीच में जो सच्चा सच्चाई से धंधा करेगा वो कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? है? पावरफुल बनेगा। क्या भीतर से है, क्या आत्मविश्वास है?
सच्चाई के रास्ते को चल रहे हैं, हमको पता मिल गया।
आज तामसी दुनिया के बीच में गरीब गरीब बनते जा रहे हैं या साहूकार बनते जा रहे हैं? है? गरीब बनते जा रहे हैं। और गरीबों में ज्यादा सच्चाई होती है या साहूकारों में ज्यादा सच्चाई होती है? बोलो। क्या बोला? तो धन तो अर्जन करना है, लेकिन धनार्जन करने के साथ साथ ये भी देखना है कि जो भी हम धन अर्जन करते हैं वो भले झूठों के बाजार के बीच में कर रहे हैं। है? बाजार होता है ना, कोई झूठा माल बेचते हैं, बहुत मुनाफा होता है, और कोई सच्चा माल बेचता है, मुनाफा कम होता है, बीच में दलाली कम खाता है, तो दुकान कम चलेगी ज्यादा चलेगी? है? दुकान कम चलती है, कमजोर होता जाता है। तो ऐसे ही है, कि बुद्धिमान तो है, जो गीता में कहा कि नर अर्जुन बुद्धिमान तो है लेकिन कलवी दुनिया तामसी दुनिया के बीच में आकर के वो बुद्धिमान भी कैसा बन जाता है, समाज के बीच में कमजोर बन जाता है या पावरफुल बन जाता है, हैं? कमजोर बन जाता है। जैसे बाबा कहते हैं क्राइस्ट है, आज की 500 करोड़ दुनिया मनुष्यों की दुनिया के बीच में लगभग 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। कितने मनुष्य से अपना बाप मानते हैं? 200-250 करोड़ आदि मनुष्य की सृष्टि जो है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है, इतना ग्रेट फादर, महान धर्म पिता। आदि में जब पहला जन्म लेता है तो समाज उसकी दुर्गति करता है या सदगति करता है, है? क्रास पर चढ़ा देता है। आज में भी क्रास पर चढ़ा दिया, फिर अंतिम जन्म में वो आत्मा आती है तो भी ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है। क्या है? बैगर। आज में भी दुर्गति हो गई और अंत में भी दुर्गति हो गई। तो उसकी सदगति कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? है? क्योंकि जो धर्म स्थापना करने वाला धर्म पिता है वो अपने धर्म में सबसे ऊंच पद पाने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनता है। तो ऊंच बनता कैसे है और कौन बनाता है धर्म पिताओं को ऊंच? धर्म पिताएं तो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं भगवान के रूप में? निराकार को मानते हैं, परंतु वो तो जानते नहीं कि निराकार सदगति कैसे करेगा। निराकार की सदगति कहें, सदगति निराकार की होती है या साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं की सदगति होती है? हैं? साकार की सदगति होती है, साकार की दुर्गति भी हो सकती है। निराकार की न सदगति न निराकार की दुर्गति, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, शरीर के बंधन में ही नहीं आता है, गर्भ जेल से जन्म ही नहीं लेता है, तो उसकी दुर्गति और सदगति का कोई सवाल है ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि जो दुर्गति और सदगति दोनों से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो एक ही तुरीय आत्मा है, उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो तुरीय आत्मा इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी रहती है, क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल की बातों को भूलता नहीं। तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है कि साधार पर त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उसके त्रिकालदर्शी होने का आधार क्या है? अरे है जन्मण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों कालों को जानने वाला है, क्योंकि मृत्यु उसकी होती नहीं, वो तो सदा शिव कहा जाता है, सदैव जागती ज्योति है, कभी अंधकार में अज्ञानता में आने की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, त्रिकाल दर्शी कब कहा जाता है? हैं? उसका आधार है कोई मनुष्य आत्मा है जो तीनों कालों को क्रॉस करती है, तब वो त्रिकालदर्शी है। उस आत्मा के तीनों कालों को देखने वाला वो है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो धर्म पिता है, मनुष्य है, मानवीय धर्म पिता है, वो तीनों कालों को क्रॉस नहीं करते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं, तो उनके आधार पर वो त्रिकालदर्शी नहीं बनता। किसके आधार पर त्रिकालदर्शी बन सकता? जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस कर जाए फिर भी षष्ठ रूपी रंगमंच पर मौजूद रहे, तब वो त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को जानने के लिए उसका आधार कौन बना? है जो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा काल रहता है, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी, वर्तमान में भी, तीनों काल में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है, इसलिए उसके आधार पर वो तुरी आत्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, परम आत्मा का भी बाप है, हीरो पाटधारी का भी बाप है। हीरो पाटधारी उसे ही कहा जाता है जो आदि से लेकर के अंत तक पाट बजाता, वो दुनिया के हीरो पाटधारी जो ड्रामा में दिखाए जाते हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए ड्रामा में, वो तो जब से ड्रामा शुरू होता है और जब तक अंत होता है तब तक ही मंच पर कार्य करते हैं। लेकिन ये बेहद का हीरो पार्टधारी ऐसा है कि ड्रामा के आदि में भी है, अंत में भी है, और आदि अंत से क्रॉस करके भी है, रंगमंच को कभी छोड़ता ही नहीं, छोड़ता है कभी नहीं छोड़ता। तो जैसे वो बेहद का बाप है आत्माओं का, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में बेहद का मनुष्यों का बाप हीरो पार्टधारी है, जिसके आधार पर वो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तीनों काल का दर्शन करने वाला। किसके तीनों कालों का दर्शन करता है, देखने वाला है, है? मनुष्य सृष्टि के बाप के तीनों कालों को देखने वाला है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप को ही वो आकर के आधार बनाता है, क्या? जैसे दुनिया में भी जितने बाप होते हैं, उन बापों के अंदर जब वो नौजवान हुए थे तो उनके अंदर कोई स्पेशल शक्ति है मनुष्य जीवन की, जो इकट्ठी हो गई। नौजवान आदमी के पास कोई शक्ति इकट्ठी होती है, जिस शक्ति को वो अपने अंदर जीवन भर धारण नहीं कर सकता, होती है या नहीं? अरे कौन सी शक्ति है?
है
हाँ, पौरुष शक्ति, जिस आधार पर उसे पुरुष कहा जाता है, वो नौजवान बनता है तो वो शक्ति तैयार हो जाती है। उस शक्ति को कोई भी मनुष्य मात्र, अरे मनुष्य मात्र तो क्या, कोई प्राणी मात्र भी जीवन भर धारण नहीं कर सकता। उसे उस शक्ति को धारण कराने के लिए कोई धरणी चाहिए, जिस धरणी को माता कहा जाता है। जिस माता के द्वारा वो अपने परिवार की रचना करता है, परिवार के भांति बनते हैं। नंबर वार, दुनिया में हर मनुष्य मात्र अपना परिवार बनाने के लिए उस शक्ति को धारण कराने के लिए कोई को चुनता है या नहीं चुनता है? चुनता है। जिसको चुनता है उसको धरणी माता कहा जाता है, धारण करने वाली धरणी। पुरुष धारण नहीं कर सकता अपने जीवन में, अगर हठपूर्वक धारण भी करेगा तो खूंखार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? है खूंखार क्यों बन जाएगा? क्योंकि वो शक्ति देह की शक्ति है या आत्मा की शक्ति है? है देह की शक्ति है, देह स्थूल है और देह से देवान पैदा होता है। देवान से पांच विकार आते हैं, उन पंच विकारों में दो बड़े खतरनाक हैं, काम और क्रोध। इसलिए जो देह अभिमानी मनुष्य होते हैं, जिन्हें अपनी कर्मेंद्रियों का विशेष भान रहता है, कर्म करने के लिए विशेष लालायित रहते हैं, वो दुष्ट युद्ध करने के लिए, दुष्ट शासन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें दुष्ट युद्ध करना ही पड़ता है। कब? जब देह अभिमानी बनते हैं तब, या जब आत्मा अभिमानी होते हैं तब, देह अभिमानी होते हैं तब ऐसा युद्ध करना ही पड़ता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है कि इस द्वैतवादी दुनिया में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं। और वो दुर्योधन दुशासन पना देवभान से आता है। माता अगर सच्चे अर्थों में धारण करने वाली सच्चाई से उस पुरुष की शक्ति को धारण करे तो वो सती कही जाती है। तो कहते हैं सती साध्वी। साध्वी माने साधना करने वाली। अपनी इंद्रियों को भी साधती है और जिसका संग करती है सच्चाई से जीवन में, उसकी इंद्रियों को भी साधती है। इसलिए दोनों ही पावरफुल बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी धरणी, जिसकी घरवाली अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घरवाली गंदी हो, झूठी हो तो घर नरक बन जाए। वो परम पुरुष है जो ये परंपरा जिसके द्वारा चालू होती है, कि वो परम पुरुष भी आत्मा है या देह है? आत्मा है। और उसकी आत्मिक शक्ति जब त्रिकालदर्शिता को प्राप्त कर लेती है, जैसे इस दुनिया का कोई भी मनुष्य, नौजवान बनता है तो बहुत पावरफुल कहा जाता है। जैसे ब्रह्म वाक्य है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, तो कौन सी ताकत आ जाती है कुमारों में? हैं? हैं? पौरुष। वो देह की शक्ति भी इतनी पावरफुल है, वो देह विनाशी है तो भी वो देह की शक्ति इतनी पावरफुल, और आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी, जो आत्माओं का बाप अविनाशी है वो अविनाशी बाप बाप कहा जाता है। परिवार में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? हैं? बाप। ये मनुष्य सृष्टि भी कभी एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में थी, सारी पृथ्वी के रहवासी एक पिता की संतान थे। और पिता सबसे पावरफुल था या नहीं था? है? था। वो मनुष्य सृष्टि का पिता होगा या सिर्फ आत्माओं का पिता होगा? है? मनुष्य सृष्टि का पिता था। वो मनुष्य सृष्टि का पिता उसको पावरफुल बनाने वाला कौन? उसको पावरफुल बनाने वाला वो पिता है जो मनुष्यों का पिता नहीं कहा जाता, क्योंकि मनुष्यों को मन होता है। और जो परमात्मा परम पाटधारी हीरो पाटधारी आत्मा है जो सब मनुष्यों का पिता है, बीज है, सार है, बीज माने सार, उसका भी जो बाप है वो है मनुष्य आत्माओं के बीच में मनुष्यों का पिता का भी पिता, एवरलास्टिंग पिता, सुप्रीम फादर। फादर्स के बीच में जिसको सुप्रीमेसी प्राप्त है, किसके फादर्स है? आत्माओं के जो फादर हैं वो कोई है ही नहीं। मनुष्य आत्माओं का फादर जिसे परमात्मा कहा गया है, गीता में भी बोला है, सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं, एक पतित न होने वाली आत्मा, वो एक ही है, उसको गीता में कहा है अक्षर, चरित नहीं होती, वो एक ही है। और दूसरी है जो चरित होने वाली है, पतित बनने वाली है, संग के रंग में आती है और पतित बनती है, वो कैसा है? इस सृष्टि पर आता तो है, संग के रंग में भी आता है, लेकिन पतित नहीं बनता, वो एक ही है। और जिस पतित दुनिया के बीच में आता है, उस पतित दुनिया में चाहे मनुष्यों की आत्मा हो चाहे कोई भी प्राणी मात्र हो, सबकी आत्माएं पतित होने वाली, क्षरित होने वाली, नीचे गिरने वाली, शक्तिहीन होने वाली, उन शक्तिहीन होने वाली आत्माओं के बीच में जो सबसे जास्ती संग के रंग में आती है, सबसे जास्ती लंबे समय तक संग के रंग में आती है, वो आत्मा सबसे जास्ती क्षरित हो जाती है। क्या कहा? है, कोई बैटरी है, ऐसे समझो ये आत्मा बैटरी है, पावरफुल बैटरी है, जो दूसरी छोटी छोटी बैटरीज हैं उनके साथ कनेक्ट की जाएगी तो वो पावरफुल बैटरी डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल डाउन, उसमें शक्ति गई, करंट खत्म। जैसे स्प्रिट रही नहीं, वो बैटरी तो स्थूल है, टूट सकती है, फूट सकती है, जल सकती है, राख हो सकती है, लेकिन ये आत्मा रूपी बैटरी तो है, हाँ, बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकती, कुछ न कुछ है, स्प्रिट रहती है, लेकिन ना के बराबर। तो जैसे वो स्थूल बैटरी पत्थर बन जाती है, ऐसे ही परम पाटधारी आत्मा की बैटरी भी इस झूठ की दुनिया में, झूठों के संग में आते आते एकदम पत्थर जैसी बन जाती है। तो जैसे स्थूल बैटरी होती है उसमें ताकत है, करंट है, तो उसको कहा जाता है स्प्रिट। ताकत नहीं है तो पत्थर, तो मनुष्य आत्माओं में जो बैटरी है आत्मा रूपी, नंबर वार पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो आत्मा रूपी बैटरी संग के रंग में आते आते डिस्चार्ज होती तो है, कोई की कम डिस्चार्ज होती होगी और कोई की ज्यादा डिस्चार्ज होती है, कोई की लंबे समय के बाद डिस्चार्ज होती है और कोई की थोड़े समय के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाती है। तो जो अव्वल नंबर बैटरी बताई मनुष्य आत्माओं के बीच में, जो सबसे जास्ती पावरफुल बैटरी थी, फुल चार्ज, उसको चार्ज किसने किया? उसका भी जो बाप है, वो बाप ये परंपरा चालू करता है, जो दुनिया में परंपरा आज चल रही है कि कोई भी बाप अपना वर्षा हिस्ट्री में भी देख लो, बड़े बच्चे को देता आया या छोटों को दिया, बड़े बच्चे को दिया, तो ये परंपरा उसने आके चालू की। वो जानता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी मनुष्य आत्मा रूपी बैटरी है जो कलयुग के अंत में बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है, नाम मात्र को कहीं थोड़ी चैतन्यता रहती है, उसको वो चार्ज करता है। कैसे चार्ज करता है? ज्ञान, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे पवित्र चीज है, क्योंकि जो परम पवित्र आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो परम पवित्र आत्मा जब त्रिकालदर्शी बनती है तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आने के लिए मजबूर हो जाती है, उसे आतरवेला होती है मैं षष्ठी पर जाऊं। और अपनी शक्ति को तिरोहित करूं कोई में, तो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि मैं जब आता हूं तो जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, चाहे वो पुरुष ही क्यों न है, पुरुष में ही आता हूं तो उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, चाहे वो दादा लेखराज नाम का पुरुष हो या कोई भी हो। क्या नाम रखता हूं? ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां, क्योंकि वो परम पुरुष है ना। कैसा पुरुष? परम पुरुष है तो माता भी कैसी चाहिए? परम पाटधारी माता चाहिए या नंबरवार चाहिए? परम पाटधारी। इस षष्ठी पर आता है तो जो परम पाटधारी हीरो पाटधारी मनुष्य है, उस मनुष्य के तन में प्रवेश करके उस तन के द्वारा काम लेता है, माने तन का आधार लेता है, तन को कंट्रोल करता है, तन की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल नहीं करता, उसका दिया हुआ नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। किसके शासन में रहना है? आत्मा के शासन में रहना, स्वयं भी आत्मा के शासन में रहना और दूसरों को भी अपनी आत्मा के शासन में रहने के लिए स्वतंत्र छोड़ना, उसको कहेंगे स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये बात गीता में भी कही है, स्वधर्मे निधनम से यह परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना, आत्मा के धर्म में रहना, यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात है। आत्मा के अलावा किसी दूसरे के कंट्रोल में रहना, आत्मा के अलावा क्या है? मन है, ज्ञानेन्द्रियां है पांच, फिर कर्मेंद्रियां है पांच, उनके तंत्र में नहीं रहना, न इंद्रियों के अधीन होना न मन के अधीन होना। किसके तंत्र में रहना? आत्मा के तंत्र में रहना। और आत्मा क्या है? क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते दुनिया के सब मनुष्य मात्र देह अभिमानी बन जाते हैं। देह अभिमान में इतने रचे पचे हो जाते हैं कि उन्हें लगातार कर्म इंद्रियों की ही स्मृति रहती है। कर्म में आसक्त हो जाते, कर्मेंद्रियों में आसक्त हो जाते, जो देह का अंग ही है। और देह पांच पंचभूतों से बनी है। कौन कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पंचभूतों से ये देह बनती है। ये देह विनाशी क्या? ये देह विनाशी। और इसके अंदर जो पांच भूत हैं, पंचभूत, वो भी विनाशी। विनाशी माने मिट्टी बन जाते, राख हो जाते। तो देह विनाशी है, लेकिन देह में इंद्रियां तो नंबर वार है ना। नंबर वार इंद्रियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। तो जो श्रेष्ठ इंद्रिय है, उस श्रेष्ठ इंद्रिय में आत्मा की रोशनी दिखाई देती है। जब मनुष्य मरता है तो आत्मा निकल जाती है और आंखें रोशनी नहीं, रोशनी रहती नहीं, आंखें बटन जैसी हो जाती। कोई चैतन्यता नहीं दिखाई देती। तो श्रेष्ठ इंद्रियां जो हैं, आंख, उसमें फिर भी चैतन्यता है और लेकिन उस इंद्रिय से भी श्रेष्ठ और पावरफुल ग्यारहवीं इंद्रिय जो मन है, वो तो बहुत प्रबल है, बहुत चंचल। वो मन अगर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बुद्धि की लगाम नहीं लगाई जाती है, तो वो मन अपनी चंचलता के आधार पर जरूर गड्ढे में ले जाता। लेकिन मनुष्य नंबर बार हैं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई पहले आते हैं, कोई बाद में आते हैं। जैसे मां के पेट से कोई बच्चा पहले आता है, कोई बाद में आते हैं। तो जो पहले आता है वो बड़ा बच्चा माना जाता है, जिस बड़े बच्चे को मानवीय परंपरा में बाप अपना वर्षा पिरो देता है, ये परंपरा उसके द्वारा शुरू होती है, वो भी षष्ठ मंच पर आता है तो आत्मरूपी बच्चों के बीच में जो पहले पहले इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष होता है क्योंकि वो तीनों काल पर इस षष्ठी में रहता है, सतयुग को भी क्रॉस करके रहता, उस काल में पहुंच जाता जो सतयुग से भी ऊंचा काल है, उस काल का नाम रखते हैं शूटिंग काल का नाम रखते हैं जो ऊंचे से ऊंचा काल है उसका नाम है पुरुषोत्तम युग। किसका युग? पुरुषों में जो उत्तम है उसका युग, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच में जो उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा है मनुष्यों के बीच, हीरो पार्टधारी आत्मा, उसके नाम पर उस युग का नाम पड़ता है पुरुषोत्तम संगम युग। वैसे उस युग की यादगार भी है भक्ति मार्ग में, हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। क्या? हर चौथी वर्ष एक महीना एक्स्ट्रा आता है 12 महीने के अलावा, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, वो यादगार है इस युग की, जिस युग में जो बड़ा आता बड़ा ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा, उसकी रिहर्सल होती है, शूटिंग कहो रिकॉर्डिंग कहो, कौन शूटिंग करता है, कौन रिहर्सल कराता है, रिहर्सल कराने वाले को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर। वो डायरेक्टर जो सदैव पर्दे के पीछे रहता, किसी को इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो डायरेक्टर रंगमंच पर आता है, पर्दे के पीछे रहता है और इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा के द्वारा रिहर्सल कराता है अपने अपने पार्ट की। तो जब रिहर्सल कराएगा तो जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, जो ह्यूज ड्रामा में टाइम टू टाइम अलग अलग जन्म लेकर के अलग अलग शरीर रूपी कपड़े पहनकर पार्ट बजाती हैं, वो अपने पार्ट को संगम में रियलाइज करेंगी या नहीं करेंगी? है, रियलाइज करती हैं। वास्तव में हम ज्योतिबिंदु आत्मा क्या हैं? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि पार्टधारी होकर अपने पार्ट को न जाने तो उस पार्टधारी को बेवकूफ कहेंगे। क्या बुद्धिहीन कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिहीन कहेंगे। तो इसे क्या साबित हुआ कि हम सब ज्योतिबिंदु आत्माएं अभी कलयुग के अंत में आते आते क्या बन गए? हैं? बुद्धिहीन बेवकूफ बन गए। बुद्धि क्षीण हो गई। बुद्धि जो सर्वोपरि शक्ति है मनुष्य के जीवन में, जिसे हजार नियामत कहा जाता है, वो हर मनुष्य आत्मा के अंदर ना के बराबर बुद्धि। अगर कोई कोई आत्माएं हैं जो आत्मलोक से लास्ट में आई हैं, पावरफुल हैं भी, लेकिन इस तामसी दुनिया के बीच में आकर के वो बड़ी जल्दी तामसी बन जाती है। और ऐसी तामसी बुद्धि बन जाती है कि उनकी बुद्धि दुनिया के निर्माण का काम नहीं करती, ध्वंस का काम करती है, दूसरों को नीचे कैसे दिखाएं। दूसरों का अकल्याण कैसे कर दें, ऐसी बुद्धि चलती है। और दुनिया के विनाश का साधन तैयार कर लेती है एटमिक एनर्जी। तो बुद्धि तीखी तो कहेंगे, लेकिन तीक्ष्ण बुद्धि का फायदा संसार को होता है या नुकसान होता है? नुकसान ज्यादा होता है। ऐसी तामसी बुद्धि बनती है कि जब वो ऐसा बारूद तैयार करते हैं खतरनाक, तो उनकी तामसी बुद्धि में ये भी नहीं आता कि ये खतरनाक बारूद से हम भी खत्म हो जाएंगे। और उन तामसी बुद्धि वाले बुद्धिहीन देहाभिमानी मनुष्यों को ये सारी दुनिया के मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। बुद्धिमान समझते हैं, पावरफुल मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं या नीची दृष्टि से देखते हैं? हैं? बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वो देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी है, क्योंकि देह के पांच भूत पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पंच भूतों का चिंतन करते हैं। भौतिकवादी हैं, पंच भूतों का चिंतन करने वाले क्या हुए? भौतिकवादी हैं, उन्हें आत्मा का पता ही नहीं है। कि पंच भूतों से बनी हुई देह से भी ऊंची कोई चीज शक्तिशाली इस देह के अंदर है, उनको पता ही नहीं रहता और वो अपना प्रभाव इस दुनिया में इतना प्रबल प्रभाव छोड़ते हैं कि इस दुनिया का प्राचीनतम देश भारत देश, जिस भारत में कभी स्वर्ग पनपता था, जिसे सभी धर्म पिताएं मानते भी हैं, फॉलोअर्स भी मानते हैं, अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज हेविन, हेविन बनाने वाले को भी मानते हैं हेविनली गॉडफादर, मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, लेकिन जानते नहीं हैं कि वो जन्नत बनाने वाला हेवनली गॉडफादर निराकार होता है या साकार होता है या निराकार साकार का मेल होता है, वो जानते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं ये पांच एलिमेंट से बनी हुई ये जो देह है यही सब कुछ है। अपन को क्या मानते हैं? देह मानते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट वो देह का ही चिंतन करते हैं, पांच एलिमेंट्स का ही चिंतन करते हैं। उनके प्रभाव में जो पुराने थे पुराना देश, जहां कभी स्वर्ग हुआ करता था, जिस स्वर्ग की स्थापना सदैव स्वस्थिति में स्थित करने वाली आत्मा ने की थी, कौन? जो सदा काल स्वस्थिति में स्थित रहता है, कौन? आत्माओं का बाप। किसका बाप? आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं का बाप, सिर्फ मनुष्यों का बाप नहीं, जितने भी प्राणी मात्र हैं सबकी आत्मा का बाप। वो सदा स्वस्थिति में आत्मा की स्थिति में स्थित रहता, वही एक ऐसी तुरीय आत्मा है, जब ऐसी तामसी सृष्टि बन जाती है जिसमें हर आत्मा अपने को देह समझती है, आत्मा को भूल जाती है, भारतवासियों में कोई थोड़े से भारतवासी हैं, जो आत्मा को समझते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो वो आत्माओं का परमपिता भारत में ही आता है, दूसरे देशों में नहीं आता, क्योंकि उसने जिस धर्म की स्थापना का सच्चा तरीका बताया था वो भारत में आकर बताया था और भारत को ही बताया था। किसको बताया? भा माने ज्ञान की रोशनी, भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है वो षष्ठी के आदि से लेकर अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। ज्ञान माने है जानकारी, काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि स्वयं सत्य जो सदा सत्य है, जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, भगवान क्या है? सत्य है। भारतवासी भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य जो सदा सत्य है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के शूटिंग पीरियड अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर नई दुनिया बनाने का रास्ता बता देता है। त्रिकांतदर्शी है ना, तीनों काल का ज्ञाता है ना, तो तीनों काल में जो काल 100% सत्य है, कैसा सत्य? 100% सत्य, सत्य माने सच्चा, सत्य माने ज्ञान युक्त, वो सच्चाई का ज्ञान एक से ही आता है जो त्रिकालदर्शी है। उसके अलावा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसके अंदर 100% सत्य सदैव टिकता हो। आत्माएं सत्य हैं, अविनाशी हैं, अविनाशी चीज का कभी लोप नहीं होता, लेकिन नंबर वार हैं या एक जैसी है? नंबर वार है। तो नंबर वार में जो मनुष्य आत्मा 100% सत्य बनती है उसके सत्य बनने का आधार क्या है? आधार है कि जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाया है तीनों काल में, या कहें षष्ठी रूपी रंगमंच के चारों सीन में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सच्चा जीवन का पार्ट बजाया, उसके अंदर जन्म जन्मांतर के सच्चाई के संस्कार हैं और उसको क्या पसंद है? है उसको सच्चा ही पसंद है। नंबर वार जो सत्य का पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं उनको नंबर वार पहले पहले उठाता है। क्या समझा? षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो पहले पहले उतरते हैं वो ही नंबर वार सत्य है। जो लास्ट में कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं वो झूठ खंड में आती हैं, तो झूठी होती हैं या सच्ची होती हैं? है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर झूठों के बीच में आती हैं, तो उनको झूठों का ही संग का रंग लगता है और निचात झूठी पार्ट बजाती है। तो वो जानता है कौन 100% सत्य है और कौन आत्माएं कम से कम सच्ची हैं, नहीं तो 99% झूठी। तो किनको पहले उठाएगा? है जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं उनको पहले उठाता है। जब आता है तो अव्वल नंबर जो सत्य है सच्चाई का पाठ जन्म जन्मांतर बजाया है। सारी दुनिया झूठी बनती है। कैसी झूठी? ब्रह्मवाक्य मुरली में है, झूठ है झूठ। क्या? झूठ है झूठ, सच की रक्ति नहीं। वो भी यही कहता। और वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसे बताया राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, तो वो राम वाली बाप वाली आत्मा वो भी लिखती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता जिस समय वो लिखती है? उस समय कलयुग की बात है। कलयुग में उस आत्मा ने जो अनुभव किया वो लिख दिया। जो लेन देन है वो सारा झूठा। पापियों का लेते हैं, पापियों को देते हैं, तो कर्म बंधन किसके साथ बंधेगा? है पापियों के साथ बंधेगा। पुण्यात्मा देवता कोई है ही नहीं। तो झूठों के संग में आते आते सब झूठे ही बन जाते। वो राम वाली आत्मा ही कलयुग के मध्य में आकर के मध्यांत में आकर के ऐसे लिखती है। कलयुग के मध्यांत में उसे अनुभव हो जाता है ये सारी दुनिया झूठ हो जाती है। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, जो कुछ भी पेट में जा रहा है वो सच्चा नहीं है। कमाई कैसी कमाई पेट में जा रही है? झूठ की कमाई पेट में जा रही है। तो उस राम वाली आत्मा के लिए बोला है कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि कलयुग में सब झूठे हो जाते हैं, उस शास्त्र का नाम है रामायण। क्या नाम है?
रामायण।
आयन माने घर। किसका घर? राम का घर। उस रामायण में राम की जीवन कहानी है, राम का जीवन चरित्र है। और वो रामायण किसने लिखी है? जिसने लिखी उसने अपनी जीवन कहानी संगम युग की सारी लिख दी। द्वापर युग में जब वो आत्मा 2000 साल पूर्व वाल्मीकि के नाम से थी, तब भी रामायण लिखी। तो किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। राम की आत्मा ने कहां लिखी? हाँ, कि राम की ही आत्मा जो संगम युग में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। क्या उत्तम पार्ट बजाती है? उत्तम से उत्तम पार्ट जो भगवान बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उसमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी ब्राह्मण को बताया है चोटी का ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। चोटी कहां होती है? नीचे पांव में या सर के ऊपर? माने सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा पार्टधारी। कैसा ऊंचा पार्टधारी? जैसे इस पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, होते हैं ना? सभी देशों में मोस्टली पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे। उन पहाड़ों की कोई न कोई चोटी सबसे ऊंची होती है, होती है ना? लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? है भारत में। क्या नाम है? हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर। काय का घर है? है बर्फ का घर। उस हिमालय पहाड़ की कोई भी चोटी पर चले जाओ, बर्फ से ढकी हुई होगी, बर्फ ही बर्फ। तो वो तो स्थूल पहाड़ है। कैसा पहाड़? स्थूल पहाड़। जैसे इस दुनिया में स्थूल में सूरज चांद सितारे हैं, है ना? वो जड़ हैं, स्थूल हैं। और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य ज्ञान सितारे। उन सितारों के बीच में कोई चैतन्य ज्ञान चंद्रमा भी है। वो ज्ञान चंद्रमा में जो प्रकाश आता है, ज्ञान चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, वो सूरज के प्रकाश की तरह गर्म होता है या ठंडा होता है? है? इसका मतलब वो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कोई है, वो शीतलता से भरी हुई है या नहीं है? शीतलता से भरी हुई है, लेकिन चंद्रमा पर आर्म्स स्ट्रांग पहले गया ना, और आज वैज्ञानिकों ने बहुत खोज कर ली, दूसरे ग्रहों उपग्रहों की भी खोज कर ली। उसमें चंद्रमा के लिए बताया कि वहां ज्ञान वो जल है ही नहीं, तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें ज्ञान जल होगा है? हो ही नहीं सकता। स्थूल में नहीं है चंद्रमा में जल, तो जो चैतन्य ज्ञान चंद्रमा है उसमें भी ज्ञान जल का नाम निशान नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में ये जो हिमालय पहाड़ है वो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कोई भी मौसम हो, उस हिमालय पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। बर्फ है, ठंडा करने वाली बर्फ है, लेकिन जल जल नहीं। जल बहता है और बर्फ जाम रहती है। तो जो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा है, इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, वो आत्मा का नाम शास्त्रों में हिमालय राज है। कैसा राजा? कहाँ का? हिमालय का राजा। और उस हिमालय राज की सबसे ऊंची दुनिया में एक चोटी है, उसका नाम है एवरेस्ट। ईस्ट माने पूरब, पूर्वीय सभ्यता की सबसे ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली चोटी। ऐसी चोटी जब महाविनाश में महामृत्यु के टाइम पर सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है, सारे ही देश विदेश धर्मखंड, चीन हो जापान हो यूरोप हो अफ्रीका हो ऑस्ट्रेलिया हो अमेरिका हो, सब जल में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर जलमयी, उस जलमयी में भी वो चोटी नहीं डूबती है। क्या? वो चोटी नहीं डूबती है जिसकी यादगार ब्राह्मण चोटी है, जो ब्रह्म वाक्य है कि जब मैं आता हूं तो जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी ही ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक ब्राह्मण वाले छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चा बुद्धि, और चाहे एडवांस ज्ञान लेने वाले ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हो, वो वो सारे ही ब्राह्मण बच्चे उस जलमयी में, ज्ञान जल की जलमयी में डूब जाते हैं। इतनी भयंकर बाढ़ आती है दुनिया में। जो कवियों ने लिखा भी है, पुराने कवियों ने, उधो आई ज्ञान की आंधी, कैसी आंधी, चौदिस काल फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिस काल फिरे। अज्ञान की आंधी कहो, अज्ञान की बाढ़ कहो, जब स्थूल जल की बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी अच्छे तरह से मिल जाती है या नहीं है? तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ज्ञान जल की बाढ़ आती है तो क्या होता है? उस बाढ़ में, उस जल में क्या मिल जाता है? देवान की मिट्टी मिल जाती है, और उसमें जो प्राणी डूबते हैं, उछरते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ये तो हुई ब्राह्मणों की दुनिया की अंत की बात। ब्राह्मणों की दुनिया का जब आदि होता है तो उस समय जब पाप आते हैं, सुप्रीम सोल बाप, तो उस दुनिया की ये हालत होती है कि सारी दुनिया विकारों की दलदल में धस जाती है, डूब जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया आदि में भी और अंत में भी विकारों की दलदल में डूब जाती है, तब मैं ब्राह्मणों की चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या, किसको पकड़ कर उठाता हूं? है? सब तो डूब गए, बचा कौन? है? चोटी बची, जिसे एवरेस्ट चोटी, एवरेस्ट एकदम पूर्वी सभ्यता का प्रतीक कहा जाता है। वो चैतन्य ज्ञान ज्ञानियों की चोटी है। ज्ञानियों में भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? है? तो जो अव्वल नंबर चोटी है, ब्राह्मण चोटी, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण, सो अव्वल नंबर देवता महादेव, देवताओं में बड़ा महादेव, वही त्रेता में क्षत्रिय अव्वल नंबर, वही द्वैतवादी द्वापर युग में अव्वल नंबर का विशेष बनता है वैश्य, और वही कलयुग में अव्वल नंबर का शूद्र, वही फिर अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनता है। उसको भक्ति मार्ग में भक्त लोग उसकी नकल करते हैं। भक्त लोग जब मंदिरों में या तीर्थों में जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, क्या पूरा चक्कर लगाते हैं, तो उस बड़े से बड़ा चक्कर लगाने वाला षष्ठी का चक्कर लगाता है ना, वो तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? है? कैसे? चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन कैसा चक्कर? बालजोली का चक्कर, सर नीचे टांग ऊपर, फिर गुलाटी मारी, टांग नीचे सर ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते करते पूरा चक्कर लगाते हैं। ये है संगम युगी बालजोली का खेल। क्या क्या खेल? बालजोली का खेल। भक्ति मार्ग में ये खेल खेलते हुए मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थों की परिक्रमा लगाते हैं। संगम युग में कोई आत्मा है जिसको सदा सहयोग देने वाली जो आठ आत्माएं हैं, जो आठ दिग्पाल कहे जाते हैं, आठ दिशाओं को पालने वाले, वो भी यही बालजोली का चक्कर लगाते हैं। जिनके लिए बोला ब्रह्म वाक्य कि सबसे जास्ते नीचे ऊपर होने वाले आठ हैं। क्या संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में अभी अभी नीचे और अभी अभी ऊपर, एकदम बुद्धियोग से पांच मार से नीचे गिरते, फिर एकदम ऊंचे उठ जाते। उनमें जो अव्वल नंबर है उसके लिए बोला है तुम जिंद हो। क्या? जिन्नात। जिन्नात कहता है मेरे को काम दो, हे मालिक मेरे को काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम देता है मालिक, चढ़ो उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, माना। उस जिन्नात को ये काम मिला हुआ है कि जैसे कोई पांच मंजिल से नीचे गिरता है। ब्राह्मणों के लिए बोला ना, कोई ब्राह्मण विकारों में गिरते हैं तो पांचवी मार से जैसे नीचे गिरते हैं तो हड्ड बुड्ड टूट जाते हैं। ऐसे ही वो पार्ट है अव्वल नंबर पार्ट धारी, अभी अभी एकदम देहभान में नीचे गिर जाता और अभी अभी एकदम ऊपर। जिसके लिए बोला कि अव्वल नंबर पुरुषार्थी वो है जो एक सेकंड में निराकारी स्टेज में टिक जाए, बिंदु रूप नो संकल्प ऐताल, और एक सेकंड में देह अभिमानी बन जाए। जैसे देह अभिमानी सांढा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देह अभिमानी सांढा माने बैल। बैल की बुद्धि कैसी होती है? कैसी होती है? है? बैल की बुद्धि गाय सामने आएगी समय पर तो बैलबाजी किए बगैर सोचेगा नहीं बुद्धि से। ऐसा सांढा, उसकी यादगार भारत की कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी थी ना पहली पहली, उसकी निशानी क्या दिखाई गई थी? दो बैलों की जोड़ी। गाड़ी में दो बैल जोते जाते हैं, हल में दो बैल जोते जाते हैं, एक राइटिस्ट एक लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट के लिए कहते हैं आ आ आ, और जो लेफ्टिस्ट होता है उसलिए कहते हैं टिक टिक टिक। माना लेफ्टिस्ट टिक टिक की भाषा समझता है और टिक टिक की भाषा समझाता है, सुनता है और सुनाता है। कौन? टिक टिक करने वाला। और एक है आ आ आ का मतलब है, जिसको कहते हैं आराम, जाराम नहीं है, उसको बुलाते हैं आ। कौन बुलाते हैं? है बताया ब्रह्म वाक्य मुरली में, जो बुलाते हैं हे पतित पावन सीताराम आओ, वो पतित से पावन बनते हैं, और जो बुलाते नहीं वो पतित से पावन भी नहीं बनते। तो आराम, जो आराम देने वाला बैल का पार्ट बजाने वाला है, वो सूर्यवंशी बैल है, राइटियस है। और जो टिक टिक की भाषा जानता है, कैसा? टिक टिक की भाषा जानने वाला, वो टिक टिक ही सुनता है। सुनाने वाला सच्चा सुनाता है या टिक टिक की भाषा सुनाता है? है वो सच्ची बात सुनाता है, लेकिन वो क्या सुनता है? टिक टिक की भाषा सुनता है और टिक टिक ही सुनाता है। जैसे शास्त्रों में नाम दिया है कार्तिक, सुना? क्या नाम दिया? कार्तिक। क्या करता है? है? अरे टिक टिक उसने किया, टिक टिक की भाषा सुनाई, तो नाम पड़ गया टिक टिक, जिसका कोई मतलब नहीं। टिक टिक बहुत करते हो, मतलब कुछ नहीं। जैसे बरसाती में ढक ट्रा ट्रा बहुत करता है बरसात के दिनों में, लेकिन मतलब कुछ नहीं। जैसे आज के नेतागण देश विदेश में बड़ी ट्रा ट्रा की भाषा सुनाते हैं, हम देश को ये बना देंगे वो बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, सुख शांति से संपन्न कर देंगे, हमको वोट दो। जो भी देश विदेश में ऐसे नेताएं टिक टिक करने वाले टिक टिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देश या विदेश या भारत देश, जहां के नेताएं लगातार टिक टिक की भाषणबाजी करते हैं, देश सुधर रहा है, देश विदेश सुधर रहे हैं और ही नीचे गिरते जा रहे हैं, उसे कहेंगे टिक टिक की भाषा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो पार्ट बजाने वाले हैं, उनमें अव्वल नंबर टिक टिक की भाषा करने वाला कौन सा ब्राह्मण है? जो टिक टिक ही सुनता है और टिक टिक ही सुनाता है। क्या नाम है? है दादा लिख रहा है ब्रह्मा। बाबा ने ब्रह्म वाक्य मुरली में बता दिया, यह है बेहद का गंधी, जैसे हद की दुनिया में गांधी हुआ क्या कहता था है? गीत गाता था, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। राम राज्य बनाए रहा हूं, राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य में जाऊंगा। फिर रिजल्ट क्या हुआ है? और ही रावण राज्य हो गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो पार्ट बजा रहा था, जिस पार्ट को दुनिया वालों ने कहावत दी है, श्रावण का अंधा, सावन महीने में जो अंधा होता है उसको क्या दिखाई देता है? हरा हरा ही दिखाई देता है। तो ये संगम युग सावन का महीना है, सतयुग त्रेता है, ठंडक का मौसम, सभी का दिमाग ठंडा रहता है। और द्वापर कलयुग है, गर्मी का मौसम, सबका दिमाग गर्म रहता है। और संगम युग है, ज्ञान बरसात का मौसम, उस ज्ञान बरसात के मौसम में दुनिया में हरा हरा हरा, हरियाली हरियाली छा जाती है। उस हरियाली के मौसम में अगर कोई अंधा होता है तो उस अंधे को हमेशा क्या दिखाई देता है? है अंधा ही दिखाई, वो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का जीवन भक्ति मार्ग में साक्षात्कार किए, साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होते हैं या ज्ञान मार्ग में होते हैं? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुए, सूरदास को साक्षात्कार हुए, तुलसीदास को साक्षात्कार हुए, रैदास को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार तो हुए, भगवान के साक्षात्कार हुए। भगवान तो स्वर्ग बनाता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, तो क्या स्वर्ग में चले गए है? वो साक्षात्कार करने वाले स्वर्ग में गए, भक्ति मार्ग में नहीं गए ना। ऐसे यहां शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा वाली आत्मा भी साक्षात्कार करती है, और साक्षात्कार में इतना लवलीन हो जाते हैं, साक्षात्कार की बात पर विश्वास करके अंधश्रद्धा पूर्वक कि उनको स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, नई दुनिया आएगी, ये होगा वो होगा वो होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। कैसे आएगी, उसका क्या तरीका है, ये जाना है। नई दुनिया की प्लानिंग कुछ बुद्धि में आई आई है? नई दुनिया, जिस नई दुनिया में सतयुग के आदि में नारायण का राज्य था, जिस नारायण के लिए कीर्तन में गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माना जो नारायण है वो ही बचपन में कृष्ण था, दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग? एक ही आत्मा। तो मैं कृष्ण बनूंगा, ये बुद्धि में रहा अंधश्रद्धा पूर्वक। लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं आई कि वो स्वर्ग बनाने वाला कौन, जिस स्वर्ग में आने वाला पहला पत्ता कृष्ण, भक्ति मार्ग में बच्चे के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? हैं? बच्चे के रूप में पूजा जाता है। का मतलब जरूर जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और त्रिकालदर्शिता का बेसिक ज्ञान देते हैं बच्चा बुद्धियों को, क्या बेसिक नॉलेज किसको दी जाती है? बच्चों को दी जाती है। तो बच्चों को जो बेसिक नॉलेज देते हैं, उस बेसिक नॉलेज देने का निमित्त प्रैक्टिकल में दादा लेखराज ब्रह्मा बनता है। जिसमें प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर जो कहा जाता है, वो प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है, उनके मुख से सच्चाई सुनाता है। लेकिन वो बच्चा बुद्धि आत्मा, कृष्ण की सोल, जो ब्रॉड ड्रामा में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाती है, बच्चे के रूप में, और बच्चे के रूप में ही भगवान के रूप में पूजी जाती है, वो आत्मा बच्चा बुद्धि होने के कारण जो ईश्वरीय ज्ञान है उसको ऊपर ऊपर से सुनती है या गहराई में जाती है? ऊपर ऊपर से सुनती है। गहराई में जाकर के उसका मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकती। इसलिए जब मनन चिंतन मंथन नहीं करेगी तो जो ज्ञान जल है वो बर्फ का बर्फ ही बनकर रह जाता है, जाम। बुद्धि कैसी बन जाती? जामड़ी बुद्धि बन जाती। उस जामड़ी बुद्धि में से जो ज्ञान निकलता है उस ज्ञान को भक्ति मार्ग में काठ की मुरली दे दी है। काई की मुरली? काठ की मुरली। काठ की मुरली माने कठबुद्धि के अंदर से वो ज्ञान निकलता है जो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत हेवनली गॉड फादर ने दिया। कठबुद्धि रह जाती है, रिपीट करती है सिर्फ, उसकी गहराइयों में नहीं जाती, मनन चिंतन मंथन नहीं करती। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पी करके देवताएं अमर बनते हैं, ये अमर बनाने वाला ज्ञान नहीं है, सिर्फ गीता ज्ञान है रट्टू तोतों का। जैसे कोई अंधे होते हैं ना भक्ति मार्ग में, पूरी गीता रट लेते हैं, 3 घंटे के अंदर पूरी गीता सुना देंगे, ऐसे कठबुद्धि के मुख से निकला हुआ ज्ञान टिक टिक करने वाले का ज्ञान है। जैसे जगत पिता शंकर का छोटा बच्चा देवताओं का अधिपति बना दिया। गणेश क्या नाम दिया? देवगणों का ईश्वरत्व प्राप्त करने वाला, इसलिए उसकी देवताओं के बीच में सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि उस बच्चे ने माता पिता दोनों को फॉलो किया, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया, निवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाया। और कार्तिकेय ने क्या किया? क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया या अपना करके भी ठुकराया? हैं? अपनाया भी और फिर विधर्मियों विदेशियों की तरह ठुकराया भी। वो माता पिता का प्रवृत्ति वाला ज्ञान नहीं सुनाई सका, इसलिए दक्षिण भारत में जाकर, जिस दक्षिण भारत को ब्रह्मवाक्य मुरली में भारत का विदेश बताया है, जहां की परंपराएं अलग हैं, जहां की भाषाएं भी उत्तरी भारत के मुकाबले अलग है, ऐसे दक्षिण देश में जाकर के उन्होंने भारत के विदेश में जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है, विदेशी धर्म पिताओं का मूल बीज है। जैसे विदेशी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, तो ज्ञान सुनाने के नाम पर, धर्म स्थापना के नाम पर टिक 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 करते रहते हैं, और दुनिया नरक बनती है या स्वर्ग बनती जाती है? नरक बनती जाती है। सारा जीवन ऐसी टिक टिक करते हैं। तो संगम युगी पुरुषोत्तम काल में जो शूटिंग काल है, उन धर्म पिताओं, उनका जो बीज है कार्तिकेय, उनकी पैदाइश करने वाला कौन? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा देवताओं की सृष्टि भी बनती है, ब्रह्मा द्वारा नरक की सृष्टि भी बनती है। सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जिस नार की सृष्टि में कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को जन्म दिया, ब्राह्मणों को जन्म दिया, वो ब्राह्मण जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? हिस्ट्री में हैं? हुए। कोई विदेशी लोग भारत के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जीवन रहते। उसका कारण क्या? कि भारत के भारतीय ही, भारत में जन्म लेने वाले, भारत में वास करने वाले भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, मोस्टली, सब नहीं। क्या? ज्यादातर कन्वर्ट हो गए। तो उसका कारण क्या है? हाँ, ये माताओं की खासियत है क्या? भारतवासी माताओं की ये खासियत है, विदेशी माताओं की ये खासियत नहीं कि जो गुरु आया सत्य वचन महाराज ठीक है, दया निदान सत्य है, कृपा निदान उनकी बातों को स्वीकार करते रहे, बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि के आधार पर तौल नहीं की कि भारतीय परंपराएं सच्ची है या विदेशी परंपराएं सच्ची हैं। भारत में जो ज्ञान दिया जाता है वो सच्चा है या विदेशी धर्म पिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है? बस जो नई नई आत्माएं आई, नई आई या पुरानी? नई। कोई पेड़ होता है उसमें नए नए पत्ते आते हैं तो वो शोभनी के लगते हैं या पुराने पत्ते शोभनी के लगते हैं? हैं? और माताएं जो नया बच्चा पैदा हुआ तो नए बच्चे की तरफ ज्यादा आकृष्ट होती हैं या पुरानों के प्रति ज्यादा आकृष्ट होती है? ये भारतवासी माताओं की बात है, क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है। कैसे? जब ऊंचे से ऊंचा भगवंत हैविनली गॉड फादर जो हैविन का रास्ता बताता है वो जब आता है तो वो ये परंपरा शुरू करता है। क्या? अपनी सारी त्रिकालदर्शिता की पावर किसमें तिरोहित करता है? है? जिस मनुष्य में तिरोहित करता है, जिस पुरुष में तिरोहित करता है, उससे काम निकालने के लिए उसका पहले पहला नाम देता है ब्रह्मा। वो अवलंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अवलंबर है ब्रह्मा, उसमें ये खासियत है क्या कि जिसने जो सुनाया बुद्धि के आधार पर उसका फैसला नहीं किया और सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो क्या करती है? जो परम पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी के डायरेक्ट कनेक्शन में आने वाली, जो हीरो पार्टधारी रुद्र भी कहा जाता है, जिसके द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ता है। कैसा ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं। कौन सा ज्ञान यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसने रौद्र रूप धारण किया। रौद्र माने भयंकर, ऐसा भयंकर रूप धारण करता है जैसा भयंकर रूप किसी भी धर्म पिता ने अपने धर्म के फॉलोअर्स के प्रति या दूसरे धर्म पिताओं के फॉलोअर्स के प्रति धारण ही नहीं किया। माना न अपने धर्म की तामसी तत्वों को नष्ट करता है, न दूसरों के तामसी स्वरूप को नष्ट करता है। कोई भी धर्म पिता नष्ट नहीं करता, ये पावर कोई भी धर्म पिता में नहीं, वो पावर रुद्र में है, जिसके बच्चे रुद्राक्ष कहे जाते हैं। क्या कहे जाते? रुद्र अक्ष, अक्ष माने आंख। ऐसे रौद्र रूप धारण करने वाले जिनकी आंखें रुद्र की आंखें हैं, माने रौद्र रूप धारण करने वाला जो महारुद्र है, रुद्र गणों का भी बाप है, उसकी आंखें हैं। वो बीज रूप आत्माएं हैं इस सृष्टि की। कैसी आत्माएं हैं? सार रूप आत्माएं। जिस सार का कभी विनाश नहीं होता, बीज का कभी विनाश नहीं होता, जिस सृष्टि रूपी मनुष्य वृक्ष है, उसके पत्तों का विनाश होता है, जड़ों का विनाश होता है, तने का विनाश होता है, सड़ जाता है, टहनियां सड़ जाती हैं, फल फूल सड़ जाते हैं, लेकिन बीज का विनाश नहीं होता। तो वो बीज हैं 4.5 लाख। कितने? 4.5 लाख। जो 4.5 लाख बीज हैं, वो अव्वल नंबर में रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्र है, रुद्र गण है बच्चों के रूप में, फॉलोअर, तो उनके माता पिता भी होंगे या नहीं होंगे? है, बिना प्रवृत्ति के पैदाइश होती है क्या? तो कौन है? रुद्र है तो रुद्राणी भी है। क्या है? रुद्राणी। जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा, माना पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्म। किसमें प्रवेश करता है? परम ब्रह्म तो नाम बाद में दिया, प्रवेश पहले किया या नाम पहले दिया? पहले प्रवेश किया। तो जिसमें प्रवेश किया, वो प्रवेश करने वाला रुद्र में प्रवेश करता है। जो काम कोई नहीं कर सकता इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, कोई धर्म पिता भी नहीं, धर्मात्मा भी नहीं, महात्मा भी नहीं, पंडित विद्वान आचार्य कोई नहीं कर सकता, वो काम इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी करता है। उस सशक्त आत्मा में प्रवेश करता है। लेकिन वो तो पुरुष है, जिसमें प्रवेश किया वो शारीरिक रूप से पुरुष है या स्त्री चोला है? है, पुरुष है, परम पुरुष है। जिस पुरुष का आधार लेता है, प्रवेश करता है, तो उसका कार्य तो जानता है। क्या क्या कार्य है? है, रुद्र का कार्य जानता है। विशेष कार्य क्या है? जो हाँ, रौद्र रूप धारण करना। इसलिए बताया यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश वाला भी प्रज्वलित हुई। अच्छा, स्थापना के साथ ही क्या हुआ? विनाश। माता स्थापना करती केंद्र करने के निमित्त बनती है, क्या? और पुरुष क्या करता है? है विनाशी है, दुर्योधन दुशासन। तो जिस पुरुष के द्वारा रौद्र रूप धारण करने का कार्य और जिस माता के द्वारा स्थापना का कार्य, तो जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। है एक ही तन, क्या तन एक ही है, उस तन में आत्मा एक है, दो हैं या एक है? है व्यक्तित्व एक है लेकिन दो काम करने वाले हैं। एक है आत्मा, एक शरीर, पांच तत्वों का अविनाशी पुतला। आत्मा भी अविनाशी और वो पुतला भी कैसा? अविनाशी। तो जो पुतला है वो माता का पार्ट मिला, वो आता है तो पुतले को कंट्रोल करता है या मनबुद्धि रूपी आत्मा को कंट्रोल करता है? है तन को कंट्रोल करता है, पुतले को कंट्रोल करता है। उस पुतले के द्वारा माता का पार्ट बजाता। तो जो तन लेता है अपना कार्य संपन्न करने के लिए, उस तन का नाम क्या रखा? ब्रह्मा, परम ब्रह्म। उस परम ब्रह्म में, तन में बुद्धि है ज्यादा, बुद्धि का तत्व ज्यादा है, या जो आत्मा है उस तन के अंदर उसमें बुद्धि का तत्व ज्यादा है? है, है? आत्मा में बुद्धि का तत्व ज्यादा है और जो तन है वो भी परा प्रकृति कही जाती है। गीता में भी प्रकृति के दो रूप बताए, क्या? एक है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, एकदम जड़, और दूसरी है उन जड़ तत्वों को भी कंट्रोल करने वाली पांच देवात्माएं, पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। क्या नाम दिए हैं? देवता हैं या जड़ तुम्हारी है? है, है तो देवता। देवता थे सतयुग त्रेता स्वर्ग की सृष्टि में देने वाले थे, लेने की इच्छा करने वाले नहीं थे, लेकिन वो जो शरीर पांच तत्वों वाला पुतला जो तैयार होता है उसके
प्रैक्टिकल रूप है, परा प्रकृति कही जाती है। वो परा प्रकृति इस सचिरूपी रंगमंच पर सदाकाल है, या विनाशी है, सदा काल है। माना पांच तत्वों का जो सार रूप शरीर है वो शरीर भी सदा काल और वो आत्मा भी सदा काल। अंतर क्या है? जो शरीर है वो बुद्धिहीनता का पार्ट बजाता है
और आत्मा बुद्धि तत्व है, बुद्धिहीन नहीं है, इसलिए वो आत्मा जो शरीर का आधार लेकर चलती है उसका नाम दिया बुद्धिमान नर अर्जुन। कैसा नर? बुद्धिमान, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। एक सुनाए, दो सुनाए, चार सुनाए, आठ सुनाए, दस सुनाए, बीस सुनाए, चारों तरफ से सुनाना सुनाना सुनाना। कैसा सुनाना? झूठ है लेना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रट्टी नहीं। सारे दुनिया के अखबार झूठ सुनाए, झूठ खंड की दुनिया है ना, झूठी बातें सुनाने वाले हैं ना, झूठे अखबार बनाएंगे या सच्चे बनाएंगे? उन अखबारों से सत्य खंड की स्थापना होगी या झूठ खंड बनेगा? झूठ खंड बनेगा। टीवी चैनल्स, रेडियो, इंटरनेट, ये नरके द्वारा बनाए हुए हैं या देवता के द्वारा बनाए हुए हैं या भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं? तो नरक क्या करता है? नरक बनाता है। ये सारे वैज्ञानिक साधन जो तामसी बुद्धि बने मनुष्यों ने बनाए हैं, तामसी दुनिया में बनाए हैं, उनसे बुद्धिहीन प्रभावित होते हैं। कौन? बुद्धिहीन आत्माएं प्रभावित हो जाती है। जो बुद्धिमान नर अर्जुन जैसी आत्माएं हैं वो प्रभावित नहीं होती, और प्रभावित होती भी है तो नंबर वार प्रभावित होती है। अगर नंबर वार भी प्रभावित होती है तो भी उनको झूठ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? झूठ कहेंगे। एक आत्मा ऐसी है इस सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो एक सत्य बाप हेवनली गॉड फादर के बताए हुए त्रिकालदर्शिता के ज्ञान से ही प्रभावित होती है और दुनिया में किसी से प्रभावित नहीं होती। जैसे पुराने पुराने भारतीय परिवार हैं जिनके लिए बाबा ने बोला ब्रह्म वाक्य कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप तो हो जाता है, 80-90% लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रहता जरूर है, और धर्म धर्म खंड सारे लोप हो जाते हैं, लेकिन भारत देश, भारत खंड पूरा लोप नहीं होता। ऐसे ही जो भारत में पार्ट बजाने वाली भारत माता की आत्मा और भारत पिता, दो है ना, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा और पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, दोनों चैतन्य आत्माएं हैं या नहीं है, लेकिन उसमें वो आत्मा कौन सी है जो सदा काल अविनाशी है, क्योंकि विनाश शरीर का होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। तो ऐसी आत्मा जो है न उसके आत्मा का विनाश का तो सवाल ही नहीं, लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता। तो वो शरीर जो है, वो शरीर रूपी वस्त्र शरीर रूपी रथ है, उसका वो आधार लेता है और आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। क्या? इसलिए जिस शरीर रूपी वस्त्र का रथ का आधार लेता है वो है प्रकृति का पुतला। प्रकृति क्या है? प्रकृति, प्रकृष्ठ कृति है, कृति माने रचना। ऐसी प्रकृष्ठ रचना है कि प्रकृति पति के सिवाय और किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं है। क्या? किसी के कंट्रोल में नहीं, वो प्रकृति पति उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। तो ज्ञान सुन करके परिवर्तन होगी या प्यार से परिवर्तन होगी? प्यार से परिवर्तन होती है। प्यार ऐसी चीज है जो ब्रह्म वाक्य बोला मुरली में, प्यार पत्थर को भी पिघला देता है। क्या? पत्थर को भी पिघला देता है, माने पत्थर बुद्धि आत्मा ही क्यों न हो वो भी परिवर्तन हो सकती है। प्यार क्या है? प्यार माने अविनाशी लगाओ। सच्चा प्यार क्या है? विनाशी या अविनाशी है? अविनाशी प्यार, जो कभी टूटने वाला ना हो। वो प्रवृत्ति मार्ग, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आकर के स्थापन करने का रास्ता बताता है। स्थापन नहीं करता, प्रवृत्ति मार्ग का स्वर्ग स्थापन करता है। वो करता है या करता है? वो तो करता है, जो करेगा सो भोगेगा। करेगा नहीं, भोगेगा भी नहीं, तो वो तो करता है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको कर्ता धर्ता बनाता है। तो तन में प्रवेश करता है ना, है? रथ में प्रवेश करता है ना, तो रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए देखेंगे कि भारत की कन्याएं माताएं जितना कंट्रोल में रहने वाली हैं उतना कोई भी विदेश विदेशी धर्मखंड धर्म पिता का फॉलोअर कोई भी माता इतना कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए इन भारत की कन्याओं माताओं को गऊ का लकब दिया है शास्त्रों में, भगवान की गऊएं क्या। लेकिन मानवीय बुद्धि ने जो शास्त्र बनाए उन शास्त्रों में मानवीय गऊएं भूल गईं। उन जानवर बुद्धि वाले मनुष्यों ने क्या किया, विकारी मनुष्यों ने जानवर गऊएं समझ लिया। ये ठीक है कि जानवरों में सबसे जास्ती सीधे साधे स्वभाव की गऊ ही होती है, भारत की गऊएं खास, विदेश की गऊएं नहीं। विदेश की गऊओं को जर्सी गाय कहा जाता है, जरा सी गऊ और बाकी सब बैल। यूं कहो गाय का नाम निशान नहीं, निशानी क्या है, उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता क्या। जो जरासी गऊए हैं, जरासी गऊए उनके कंधे पर शिवलिंग नहीं होता, और भारत की गऊओं में कंधे पर शिवलिंग होता है। इसका मतलब है कि वो शिव जिसे सत्य कहा जाता है उस सत्य को जिम्मेवारी को धारण करने वाली है। भारत की गऊएं क्या है, सत्य को धारण करने वाली, और विदेशी गऊएं सत्य को धारण नहीं कर। इसलिए भारत की गऊएं जो मानवीय गऊएं हैं, ह्यूमन गऊएं, वो सती कही जाती है, सत्य को धारण करने वाली सती कही जाती है। विदेश की गऊएं कभी भी सती नहीं कही जाएंगी, वो सत्य को धारण ही नहीं करती। तो जो भारत की ह्यूमन गऊएं हैं, यूं ह्यूमन गऊओं को भगवान ने आकर के पाला था, इसलिए गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। कौन सा पाल, गौपाल, बैलपाल नहीं है, बैलपाल नहीं है, बैलों को पालता है, बैलों को पालने की जिम्मेवारी लेता है। गऊ बन के रहोगे तो पालना होगी, अंश मात्र भी बैल बने गेट आउट। तो बताया कि जो भारत की गऊएं हैं उनमें अव्वल नंबर गऊ कौन सी गाई जाती है शास्त्रों में, कामधेनु। क्या मतलब, सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली गऊ का नाम कामधेनु। उसके सारे शरीर में देव आत्माओं का वास दिखाया जाता है। किसका वास? देव आत्माओं का वास। सोलह कला संपूर्ण देवताएं हो या गिरती से गिरती कला वाले आठ कला वाले देवताएं हो, सबका उसमें वास दिखाते हैं। और जो सोलह कला संपूर्ण बनते हैं उनकी भी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती, और जो गिरती कला वाले हैं जैसे सीढ़ी के चित्र में कटी हुई त्रेता की सीढ़ियां दिखाई हैं, क्या त्रेता की अंतिम गद्दियां जो स्वर्ग के राज्य को नष्ट करने वाली हैं, उनके जो राजाएं हैं वो राजाएं कहे जाएंगे स्वर्ग को नष्ट करने वाले। तो ऐसे राजाओं के भी सर्व मनोकामनाएं पूरी करती है। सर्व माने अच्छी या बुरी, और एक है जो अच्छी कामनाएं पूरी करती है। कामधेनु जगदम्बा की सूचक है, और जगदम्बा तामसी बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती, लेकिन लास्ट पूजनीय देवी है नौ देवियों में, अव्वल नंबर पूजनीय देवी महाकाली या बिल्कुल अपोजिट है महागौरी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या करती है, कौन सी कामना की पूर्ति करती है? जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उस ईश्वरीय ज्ञान की कामना की पूर्ति लक्ष्मी करती है। तो कौन सी श्रेष्ठ है? है जो ईश्वरीय ज्ञान की कामना, जो श्रेष्ठ कामना है उस श्रेष्ठ कामना की पूर्ति करने वाली वो ही श्रेष्ठ है। जो सर्व कामनाओं की पूर्ति करती है अच्छी हो या बुरी हो उसको श्रेष्ठ श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। बुरी कामनाओं की पूर्ति करेगी तो बुरे युग का शूटिंग होगा या अच्छे युग की शूटिंग होगी? है बुरे युग की शूटिंग होगी। इसलिए अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करती है तो अच्छे से अच्छे युग सतयुग त्रेता का फाउंडेशन डालने वाली भी है, और द्वापर कलयुग बुरे युग जो है जहां दुख मिलता है मनुष्यों को वहां की शूटिंग करने वाली भी है। इसलिए उसका नाम जगदम्बा है। कहां की अम्बा? सारे जगत की अम्बा। विधवा है, पूजी जाती है, वो विधवा है या सदवा है? है विधवा है, सदवा है। लेकिन भक्त लोग जब पूजा करते हैं तो यही बोलेंगे जय माता दी, बार बार बोलेंगे जय माता दी जय माता दी, पिता का जैसे याद नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ? कि उस देवी के जो भक्त हैं वो रावण संप्रदाय बताए हैं ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्या राम संप्रदाय नहीं बताया? क्योंकि राम है रमिते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं याद में, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, उसका नाम है राम, त्रेता वाला राम है, त्रेता वाला राम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग का वो राम जो निराकारी राम बनता है, क्या संपन्न स्टेज धारण करता है आत्मा की, वो राम जिस राम को या जिस राम के शरीर रूपी रथ को या उस राम के शरीर रूपी धनुष जिसे चाप कहो, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर बूढ़ी सकर संसार, क्या शंकर का जो चाप रूपी धनुष कहो रथ कहो, उस रथ का बुद्धि में आधार लेकर जो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उसमें चढ़ाए देते हैं, अर्पण कर देते हैं, मन मना भव हो जाते हैं, वो संसार सागर से पार चले जाते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, क्या इसी जन्म में शरीर सहित पार चले जाते हैं। इसलिए वो रथ है तो जड़त्वमयी, लेकिन जड़त्वमयी रथ में भी जो भी थोड़ी बहुत आत्मिक स्थिति भावना वाली आत्मा है, क्या भावना वाली आत्मा, उसका नाम है सीता, क्या उसका नाम है अव्वलंबर सीता, जिस सीता के लिए रामायण में लिखा है तुम पावक में करो निवासा जब लग करो निशाचरनासा, क्या तुम योग अग्नि की पावक रूपी अग्नि में निवास करो, योग अग्नि में रहो तब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं। तो पहले तो है ब्राह्मणों की दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में जो राक्षसी कर्म करने वाले राक्षसी कर्म को छोड़ते ही नहीं, जो राक्षसों की दुनिया कर्म इंद्रियों से कर्म करने वालों की दुनिया कौन से युग से शुरू होती है? द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है। उस द्वैतवादी द्वापर युग की कर्मेंद्रियों के कर्म को जो छोड़ते ही नहीं है, भले हेवनली गॉड फादर ब्रह्म वाक्य मुरली में कितना भी आथत देते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं कि मेरी सेवा करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो भी भूख की व्याकुलता का कर्म इंद्रियों से कर्म करने का छोड़ते नहीं हैं, वो धंधे पेट के जरूर करेंगे। क्या कहा? नहीं तो जो बाप का धंधा, 100 बच्चों का धंधा होना चाहिए। बाप का धंधा है क्या? है ज्ञान देना, लेने की तो बात ही नहीं। हाँ, जो मनन चिंतन मंथन किया है उसको वेरीफाई कराने के लिए भले दे दो। तो ये धंधा बाप का धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा क्या होना चाहिए? जो बाप का धंधा, 100 बच्चों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। बाकी के लिए बता दिया, साफ बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। कवियों ने भी लिख दिया है, आई ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी आई? ज्ञान की आंधी आई। सारी दुनिया में अभी जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है, सब धंधे नुकसान हो जाएंगे, सब धंधे चौपट हो जाएंगे, सिर्फ ज्ञान का ब्राह्मणों का धंधा चलेगा और सारी दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र को ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, ब्रह्मा की औलाद। भले वो ब्राह्मण कुखवंशावली बने या मुखवंशावली बने, क्योंकि ब्राह्मणों की भी 9 कुरियां गिनाई गई हैं शास्त्रों में, क्योंकि 9 ही दुनिया के बड़े बड़े धर्म हैं जो आस्तिक हैं, भगवान के ऊपर आस्था रखने वाले हैं। तो उन 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भारत में आकर के अभी ब्राह्मण बनी हैं। नौ कुरियों के ब्राह्मण बन चुके, उनके 4 वर्ण बता दिए, ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए गीता में लिखा है, जब मैं आता हूं सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो 4 वर्णों की स्थापना करता हूं, निर्माण करता हूं। कैसे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। हर एक ब्राह्मण आत्मा के गुणों का विभाजन करता हूं, क्या क्या गुण धारण किए हैं, कहां तक धारण किए हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। ब्रह्मा का मुखवंशावली बच्चा मुख से सुने हुए ज्ञान को धारण करके ज्ञान देने और ज्ञान लेने का धंधा करते हैं या है? या कुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं, मुख ऊंचा या कुख माने गोद ऊंची, मुख ऊंचा। तो मुखवंशावली ब्राह्मण जो बनेंगे उनका धंधा क्या होगा? अब्बल नंबर के ब्राह्मण सो अब्बल नंबर के देवता बनेंगे। क्या? अब्बल नंबर ब्राह्मण सो अब्बल नंबर देवता, माने 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग के पहले जन्म में आकर के जन्म लेंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले, नहीं तो द्वयम नंबर का ब्राह्मण बनेंगे तो दो नंबर का देवता 15 कला संपूर्ण बनेंगे, खंडित देवता, 16 कला संपूर्ण अखंड देवता नहीं बनेंगे। निशानी क्या बताई, क्या निशानी बताई संपूर्ण देवता की, क्या निशानी बताई? जो बाप का धंधा 100 बच्चे का धंधा, बाप का धंधा नहीं तो बच्चे का भी धंधा नहीं, ये कैसा लगेगा? बाप ब्राह्मण हो और बच्चा टट्टी पे साफ साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है सड़कों पर, शूद्र का काम कर रहा है, सेवा का काम कर रहा है, शारीरिक सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा, कर्मेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञानेंद्रियों की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है? इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है या मकान बनाने वाले मजदूर को ज्यादा पेमेंट मिलता है? है, इंजीनियर को ज्यादा पेमेंट मिलता है। इंजीनियर का जो सहयोगी होंगे सुपरवाइजर वगैरह, उनको भी ज्यादा पेमेंट मिलेगा, वो दिमाग चलाते हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग देव आत्माएं करती हैं, कर्मेंद्रियों का प्रयोग है कौन करते है? हाँ, द्वैतवादी मनुष्य करते हैं, दो दो धर्मों को फॉलो करने वाले, दो दो राजाओं के अंडर में रहने वाले, दो दो भाषाएं जिनकी होती हैं, एक को फॉलो नहीं करते, अनेकों को फॉलो करते हैं। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। तो अभिविचारी ज्ञान रहेगा, जो एक से सुनेंगे, एक से सुनकर धारण करेंगे, वो अभिविचारी धर्म में जन्म लेते रहेंगे। जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का एक तना नीचे से सीधा ऊपर जाता है, न दाईं ओर झुकता है न बाईं ओर धर्मों में कन्वर्ट होता है। तो एक से सुनना चाहिए, एक से सुना, एक का सुनाया हुआ जीवन में धारण करना चाहिए, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। यहां संगम युग में अनेकों से सुनेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग से जो अनेक धर्म पिताएं आते रहेंगे उनसे भी सुनेंगे, यहां शूटिंग करेंगे, वहां ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो क्या करना चाहिए? है, एक से सुनना चाहिए। एक कौन है? शिव बाप नहीं,
बाप निराकार,
शिव बाप निराकार, सो क्या हुआ? ऊंचते ऊंच आत्मा नहीं है,
उच्च आत्मा है, ज्ञान का अंदर भी
है। हाँ, वो ऊंचते ऊंच बाप ही कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी मैं नहीं हूँ, मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। क्या तो तुम बच्चे नंबर वार हो या सब एक जैसे? तो अव्वल नंबर भी कोई है? है या नहीं? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बताया कि आत्मा रूपी बच्चा अपन को जान जाए कि मैं ये आत्मा हूं, मना सूर्यवंशी हूं, चंद्रवंशी हूं, इस्लाम वंश में ज्यादा पार्ट बजाने वाला हूं, बौद्धियों के बीच में ज्यादा बौद्धी धर्मखंड में पार्ट जन्म जन्मांतर बजाने वाला हूं, अपने आत्मा के पार्ट को जान जाए तो बाप को नहीं जानेगा है? अरे बाप को जानेगा तब ही तो अपने कुल का पता चलेगा। बाप को नहीं जानेगा तो उसे अपने पार्ट का पता भी नहीं चलेगा। तो बताया ये ठीक है कि आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है जिसमें अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है ये बहुत सूक्ष्म रिकॉर्ड है। मनुष्यों के बनाए हुए जो रिकॉर्ड है वो तो फिर भी स्थूल है। पहले ग्रामोफोन में बड़ा रिकॉर्ड तवा जैसा बनता था, फिर बाद में टैप रिकॉर्डर निकला छोटा हो गया, फिर उसके बाद वीसीडी निकला एक घंटे का भरने लगा, फिर अभी डीवीडी निकला कई घंटे का भरने लगा, फिर डीवीडी के बाद है हाँ, वो क्या डालते हैं इतना बड़ा पेन ड्राइव निकल पड़ा, फिर उससे भी बढ़िया महीन छोटा सा निकल पड़ा चिप। कितना पार्ट मनुष्यों के बनाए हुए रिकॉर्ड जो हैं, जिन मनुष्यों की बुद्धि अल्प बुद्धि है वो भी कौन से मनुष्य जो कलयुग के अंत में आत्माएं उतरती हैं, उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाए कि देवात्मा ने बनाए है? देवात्माएं तो और ही तामसी हो गई, वो क्या बनाएंगे? तो देखो जो एकदम सदाकाल 100% सत्य बुद्धि रहता है वो इस सृष्टि में आकर के पहचान देता है, बेसिकली पहचान देता है, सामान्य रूप से सारी दुनिया को वो पहचान मिल जाती है कि तुम क्या हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, मन बुद्धि सहित आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, अविनाशी हो। परंतु वो पार्टधारी आत्माएं सब एक जैसा पार्ट बजाने वाली हैं रंगमंच पर, कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का पार्ट बजाने वाली हैं, है? कोई रंगमंच पर छोटा टाइम पार्ट बजाती, कोई रंगमंच पर आकर बहुत लंबा पार्ट बजाती, कोई 84 जन्मों का पार्ट बजाती, कोई एक जन्म का पार्ट बजाती, कोई फिर ऐसी आत्मा भी है जो 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती। क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेती जिस जन्म में उसका विनाश होता ही नहीं? तो देखो बताया कि आत्मा को अपने पार्ट की महसूसियत रियलाइजेशन कौन कराएगा? हर आत्मा को है? कौन कराएगा? शिव बाप नहीं। क्यों? हर आत्मा को अपने अनेक जन्मों के पार्ट किया रियलाइजेशन कौन करेगा कि तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में क्या क्या, कितने जन्मों का, कैसा कैसा, कितना लंबा पार्ट भरा हुआ है? कौन बताएगा? आत्माओं का बाप बताएगा, जो कहता है मैं मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर माने मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूं, त्रिकालदर्शिता का प्रैक्टिकल पार्ट नहीं बजाता। तुम बच्चे नंबर वार प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हो। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर है क्या, वो मुसलमानों में भी कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। और कोई कर ही नहीं सकता। तो कौन है वो अल्लाह जिसको उन्होंने आज की दुनिया में गुरुओं से प्रभावित होकर समझ लिया कि वो अल्लाह भी जर्रे जर्रे में है। पहले कहते थे, जब 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, अल्लाह अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अभी तमो प्रधान बन गए तो क्या कहते? जर्रे जर्रे में। देखो कैसी बुद्धि पलट जाती है। सारी दुनिया की बुद्धि पलट गई। तब वो बाप आता है, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, हेवन बनाता नहीं। और जिसके द्वारा बताता है वो है मनुष्य शक्ति का एक बाप, राम बाप कहा जाता है। उसका बच्चा कृष्ण बच्चा कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि है और बाप सगीर बुद्धि है, बात को समझने वाला है। इसलिए बताया कि आत्मा की शक्ति को पहचानो। आत्मा में भरा हुआ जो रिकॉर्ड है, उस अविनाशी पार्टधारी रिकॉर्ड को पहचानो। गीता में उसका उल्लेख है कि सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक पतित होने वाली अनेक आत्माएं, और एक कभी भी पतित न होने वाली। लेकिन एक और आत्मा है पतित होने वाली आत्माओं के बीच जो सबसे जास्ती पतित तो बनती है, क्योंकि अनेकों के संग के रंग में आती है, सबका बाप है ना। लेकिन वो जो सबसे जास्ती पतित बनती है, वो ही उस आत्माओं के बाप को पहचान कर और अपने पार्ट को पहचान करके बाप समान बन जाती है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पार्ट बजाती है। उसे गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहरत, उसे परमात्मा कहा जाता है। शिव परमात्मा नहीं है, शिव परमपिता है। उसका कोई पिता नहीं है, लेकिन वो परम पार्टधारी परम आत्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को वो आकर के पहचान देता है कि तू कौन है, क्या है और मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, वो जानता है वो, और वो ही जानकारी देता है नीचे वाले मनुष्य को जो ऊंचते ऊंच बनने वाला है उसके बताए हुए रास्ते पर। क्या जानता है वो? जानता है वो जिसको पहचान दे दी, वो जानता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का मैं हीरो हूं, मैं मनुष्य सृष्टि का कर्ता धरता हूं, पिता हूं। मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का विस्तार का बीज बोने वाला मैं पिता हूं। अहम बीज प्रदप्पिता। क्या? मनुष्यों का बीज बोने वाला मनुष्य सृष्टि में मैं पिता हूं, आत्माओं का पिता नहीं। क्या हूं? मनुष्य सृष्टि का पिता। जो भी मनुष्य हैं पार्टधारी, उनके पार्ट को त्रिकालदर्शी के रूप में पुरुषोत्तम संगम युग में जानने वाला वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो आत्माओं के बाप की तरह मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाता। ओम शांति।